ओम शांति। हमारे बीच चेतना के अग्रदूत, प्रेरणा के स्रोत, परम श्रद्धे आदरणीय मोहिनी दीदी जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में जब आपने बाल्यकाल में प्रवेश किया, एक ऐसे भक्ति धर्म और आध्यात्म से संपन्न परिवार में आपने जन्म लिया, जहां श्रेष्ठ संस्कारों की माला पहनाई गई, आप बाबा के बने तो अकेले नहीं बने, आपके साथ साथ परिवार के लगभग 50 भाई बहन, 50 सदस्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चले। गंगा प्रवाहित हुई, दीदी को बाबा ने चुना और यहां से लेकर, भारत से लेकर विश्व के रंगमंच पर आपने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में बाबा के ज्ञान की ध्वजा फहराई। और इतना ही नहीं, जो हम बड़े नाज से कहते हैं कि यूएन में हमारा एनजीओ के रूप में एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व कायम हुआ आदरणीय मोहिनी दीदी जी की ओर से। और आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हमारे बीच में आदरणीय मोहिनी दीदी हैं। तालियां बजाइए, बाबा ने उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान दिया और आज भी उनके व्यक्तित्व की जितनी अंतर्मुखता है, उतनी सशक्त वरदाता और विधातापन की स्थिति भी है। वाणी का गौरव उन्हें प्राप्त है। आज स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पर वो प्रकाश डालेंगे। दीदी जब से यहाँ मधुबन में अपना स्थान ग्रहण किए हैं, जब भी जाके बैठो तो ऐसा लगता है दादी के करीब बैठे हैं, वो भासना उनसे आती है। और ऐसा लगने के साथ साथ मैं कुछ चार लाइनें कहना चाहूंगी कि बाबा ने क्या सोच के चुना था। जहां भी रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मका नहीं होता। तो हिंदुस्तान नहीं, विदेश में भी जो धूम मचाई वो दीदी ने। पास में जाकर बैठो तो कहने की जरूरत नहीं है कि हमें ये तकलीफ है, हमें ये बात कहनी है आपसे, ये प्रश्न पूछना है। कहते हैं नहर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं, नहर किसी से दुखी दिल के घाव सिलते हैं, बसंत जिसके महकने से धन्य हो जाए, ऐसे फूल सदियों के बाद खिलते हैं। आदरणीय दीदी अभी हम सबको अपनी वाणी से, वरदानों से भरपूर करेंगी और इसके बाद गहन योगाभ्यास आधा घंटे कराएंगी। हम में से कोई भी हिलेगा नहीं, बहुत आवश्यक हो तभी कोई उठेगा, अन्यथा योग करने के बाद ही हम वो सूक्ष्म ऊर्जा अपने दामन में समेट कर यहाँ से हटेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। महिमा तो अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा की है और शिव बाबा हम सभी बच्चों को, जो हम सभी वारिस बच्चे हैं, उन सबको गुणों से भरपूर करते हैं, ज्ञान से भरपूर करते हैं। पर हमें सदा याद रहता है कि एक बाबा ही है जो गुणों के भी सागर हैं, दाता हैं और हमें आप समान बना रहे हैं। आप सभी ठीक हैं? ठीक हो सभी? अच्छा, खुश राजी। कितना सौभाग्य है भगवान के घर कहें, बाबा के घर कहें, अपने ईश्वरी परिवार में हम सभी शांतिवन में इतने बड़े संगठन में बैठे हैं, हम सभी संगम युग पर अपने भाग्य की महिमा करें तो परम पार है। जब हम अपने भाग्य के बारे में सोचते हैं तो न केवल खुशी होती है परंतु बहुत बहुत गौरव होता है। हमारी दादी पूछती थी दो प्रश्न, बाबा ने आपको ढूंढा या आपने बाबा को ढूंढा। हम लोग तो सभी पुकारते थे, ढूंढते थे, तीर्थों पे जाओ, मंदिरों में जाओ, हर एक ये सोचे कि मुझे जब संदेश मिला तो कैसे, कौन, किस तरह से हम बाबा के पास पहुंचे। तो बाबा हमारे पास आए, राइट। हम सबके जन्म जन्मांतर की जो भक्ति थी उसके फलस्वरूप भगवान मिलते हैं और भगवान से फिर हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है और ज्ञान से फिर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सुना हमने कि हम देवता थे, अब हमें फिर बनना है, तो सबको टच हुआ, सबको ये फीलिंग हुई और निश्चय हुआ, स्मृति आने लग गई कि हम सभी देवता थे। बाबा भी पूछते थे कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर बाबा पूछते थे कौन राम सीता बनेंगे, तो आप किस में हाथ खड़ा करते, लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है कि राम सीता बनना है, बोलो। लक्ष्मी नारायण बनना है। दूसरा दादी प्रश्न पूछती थी, बाबा को हमसे ज्यादा प्यारा है या हमारा बाबा से ज्यादा प्यारा है। बाबा का हमसे ज्यादा प्यार है, बाबा ने हमें अपनी छत्र छाया में, अपनी दृष्टि में, अपनी गोद में, कहो पलकों पे नैनों के, ऐसे प्रेम से बाबा न केवल हमें प्यार करते हैं पर मुझे तो दिल में जितना ही बाप पिता का प्यार उतना ही बाबा की पढ़ाई, ज्ञान के सागर। अगले वर्ष में 90 साल हो जाएंगे, रोज सागर में नए नए प्रकार की लहरें, हम सभी को हर प्राप्ति का अनुभव कराते हैं, रोज सद्गुरु के रूप में हम सबकी वरदानों से झोली तो भरते ही हैं परंतु अपनी तरह ही वरदानी मूरत वरदाता, हर प्रकार के वरदान से बाबा हमें भरते हैं। किसी ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि बाबा जो हमें वरदान देते हैं क्या वो मैं हूं या मुझे बनना है। तो मैंने कहा हम हैं, जो भी वरदान मिला वो हम में विशेषताएं हैं, लेकिन उनको वरदान के रूप में अनुभव करने के लिए एक छोटी सी साधना को उशारत करना होगा और वो है स्मृति स्वरूपन्न। समय पर मन में बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है, जैसे ही वो स्मृति आएगी तो उस वरदान की वास्तविकता कहो, उस वरदान में एक ऐसी चेतना आ जाती है कि हमारा स्वरूप वैसा बन जाता है, प्रकट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे माता पिता टीचर सदगुरु की हम संतान हैं और हमें बाबा ने एडॉप्ट किया, हम बाबा की मुख वंशावली हैं, बाबा ने हमें गोद लिया है। तो हमारे संस्कार जन्म देने वाले दाता जैसे हैं। मैं तो जब बाबा के पास आई तो ऐसा ही लगा कि जिसकी संतान है हमारे संस्कार भी अपने माता पिता के ऊपर है। लौकिक में भी अगर बेटी होगी तो कहेंगे देखो अरे इसके तो फीचर्स देखो बिल्कुल माँ से मिलते हैं, या इसकी आवाज़ तो बिल्कुल, हमेशा लोग हम लोगों के व्यक्तित्व को लौकिक रूप से अपने लौकिक माँ बाप से ही कनेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसा क्यों लगना चाहिए कि तो बहुत ऊंची मंजिल है, बाप समान बनना तो बहुत ही ऊंचा कैसे होगा। पर हम में निजी संस्कार कौन से हैं, माँ बाप के हैं ना कि किसी और के हैं। आदि अनादि संस्कार हमारे माता पिता के ही हैं। एक सेकंड सोचिए आप, क्या ये बात आपको राइट लगती है जो मैं कह रही हूं। कुछ समय मन को बुद्धि को टच हुआ तभी हम सब ने अपने जीवन में ये निश्चय किया कि हम बाबा का बनेंगे, जिसमें त्याग तपस्या और सेवा हमारा एक स्वाभाविक पुरुषार्थ हो गया। बहुत मेहनत भी करते, मजबूरी से नहीं करते न मजदूरी करते, पर एक स्वाभाविक तरीके से जीवन हमारी न केवल श्रेष्ठ बनती गई परंतु एक सेवा के निमित्त भी बाबा ने हम सबको बनाया। हर एक सेवा के निमित्त है, जैसे ही ज्ञान में आते हैं हमारा परिवर्तन, हम लोगों की श्रेष्ठ सोच बोल कर्म एक ऐसा उदाहरण बनता है जिससे सेवा होती रहती है। कई मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं कि आपके लौकिक कैसे ज्ञान में आए। देखो जब ज्ञान में आते हैं तो बहुत विरोध होता है, बहुत। मैं जब ज्ञान में आई तो 11 साल की आयु थी, फिर 15 वर्ष में ज़्यादा बाबा के पास रहने लगे। तो समाज तो यही कहता है माँ बाप को, सबके क्या हुआ ये क्या हुआ, नहीं स्वीकार करते ना सहज। तो बाबा हमको सिखाते थे कि बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, आज का टॉपिक नहीं है, जिसमें सब कुछ सामना करते हुए वो लोग भी समय पाते जाते हैं। बहुत बंधन होते हैं खासकर कन्याओं को उस टाइम पर, क्योंकि उस समय पर कहीं बाहर जाना, अकेले कहीं जाना वो पॉसिबल ही नहीं था। तो चलो किसी को साथी बना लेते हैं, एक से दो इकट्ठे। क्लास होती थी 5 बजे सवेरे, क्योंकि बाबा कहते थे कि माताएं आएं और फिर घर जाके बच्चों को नाश्ता वगैरह भी दें, तो कल को ये कहेगा नहीं कि प्रभा कुमारियों के पास जाते हैं तो देखो ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। और बाबा ब्रह्मा बाबा को सवेरे क्लास करना, इसका मतलब बाबा से मैंने जब पत्र व्यवहार शुरू किया तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में अमर बनने के लिए प्रातःकाल की मुरली सुनना बहुत आवश्यक है। और उस दिन से आज तक हमने प्रातःकाल बाबा की मुरली सुन ला। मुरली पढ़ने का भी महत्व है, सुनने का भी महत्व है, फिर रिवाइज करने का भी महत्व है। तो ये जो देखो एक संसार हमारा अंदर है और एक संसार बाहर है, शारथ यही है कि अंदर का संसार बाहर का बने। और बाबा के एकदम समीप रहे और स्वभाव संस्कार से समान भी बनते जाए। हर व्यक्ति में 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो मैं आत्मा हूं पर मेरे में जो छोटा संसार है आत्मा में, जिसमें मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी है। जब बाबा के पास आते हैं तो मन एक तरफ ले जाता है, बुद्धि एक तरफ ले जाती है, संस्कार एक तरफ ले जाता है। इसलिए मनुष्य का कहते तो यही है कि इसका मन बदलता रहता है, इसके मूड बदलता रहता है, इसके निर्णय बदलते रहते हैं। कभी हमारे निर्णय बुद्धि प्रधान होते हैं, कभी हमारे निर्णय इच्छाओं से संकल्पों के होते हैं, पर होता वही है जो संस्कार होता है। आप सोचिए कि कितना विभाजन था, जहां मन बुद्धि संस्कार अपनी अपनी तरफ, हमारी वृत्ति दृष्टि कर्म, कई बार निर्णय कुछ करते हैं और करते कुछ है, सोचते कुछ है बोलते कुछ है। अभी भी होता है पर थोड़ा थोड़ा। शुरू में जो ये अंदर का संघर्ष कहो, हलचल कहो, एकाग्रता न होने का कारण स्वयं में मन बुद्धि संस्कार में एकता कहो, एक दूसरे पर विश्वास कहो, कौन कहाँ ले जाएगा। तो जब हम बहुत मनमना भाव प्रैक्टिस कई अभ्यास करते हैं, मन को शांत कर रहे हैं, एकाग्रता हो, बाबा से प्यार हो, मन के लिए मन मना भाव का अभ्यास है। और बुद्धि के लिए भी बाबा कहते हैं एकाग्रता हो। और जो हमारे संस्कार हो वो अनादि और आदि स्वरूप हो। अभी 3 प्रकार के हर संकल्प कर्म का बीज है। हर संकल्प, पहले संकल्प आता है फिर हम कर्म करते हैं। तो कईयों को तो एकदम रियलाइजेशन होती है कि ये मेरा स्वभाव है, कोई आदत है, कुछ ज़्यादा किसी बात के ऊपर दृष्टि जाती है, इच्छाएं हैं। ये सब संकल्प हमारे संस्कार के कारण है। तो परिवर्तन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर हम जब संकल्प आते हैं उसी समय संकल्प को अटेंशन देके परिवर्तन करो। कई तो घबरा जाते हैं, पहले तो ऐसे संकल्प नहीं आते थे क्योंकि पहले ध्यान ही नहीं जाता था कि कोई युद्ध भी चल रही है। हमारे यहाँ पर UN में बहुत बड़ा स्लोगन है कि जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो मन के, मनुष्य के मन से शुरू होती है। कभी लोभ वश, कभी क्रोध वश, अभिमान के कारण। आज अब सारे विश्व में, चाहे वो राजनीति, चाहे धर्म नेताएं, कोई भी जो लीडर्स हैं, अचानक बैठे बैठे आप एक देश में 1,000 रॉकेट, 1,000, ये संकल्प कैसे आया? क्या उसके पीछे कारण था? तो जैसे युद्ध जितने भी शुरू होते हैं, कहते हैं वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो फिर बाबा जब आते हैं कहते हैं कि शांति भी मन से शुरू होगी, संघर्ष भी मन से होता है, शांति भी मन से होती है। तो बेशक गीत चला मैं शांत स्वरूप हूँ। तो एक बार चंद्रमणि दादी थी, आपने देखा होगा पूर्वज आत्मा, तो हम लोग छोटे थे जाते थे उनके कमरे, तो कहती थी आप लोग शांति स्वरूप क्यों कहते हो पहले? मैंने कहा क्योंकि सबको शांति चाहिए और शांत स्वरूप होना बहुत ज़रूरी है। तो बोला अगर पवित्रता नहीं होगी तो शांति कैसे होगी? तो आप लोगों को पहले कहना चाहिए मैं पवित्र स्वरूप हूँ। तो मैंने कहा लोग तो समझते नहीं पवित्रता का, नहीं समझते इसलिए ज़रूरी है। तो पापा दादी कहती थी पहले बोलो मैं पवित्र स्वरूप हूँ फिर शांत स्वरूप, क्योंकि अशांति तो विकारों के कारण है, चाहे पूरे विकारों फिर चाहे वृत्तियाँ भी रह जाए तो हलचल तो होगी, अशांति तो होगी, पर कारण क्या है? कोई ना कोई प्रकार की अपवित्रता है। तो ये केवल हमें दूसरों को कहने की बात नहीं, पर अपने मन में भी देखो, कभी भी हलचल होती है, चाहे हम उसमें किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को की तरफ उंगली उठाएंगे, इसने ये कहा तब मुझे क्रोध आया, अगर ये ऐसा नहीं करते तो मुझे क्रोध नहीं आता। तो दादी गुलजार कहती थी, हमेशा बताती थी कि माया देखने में नहीं आती है और किसी न किसी के द्वारा आती है। उस समय वो आत्मा हमारे लिए माया का रूप है तो क्रोध आ जाता है। आपने भी सुना है बाबा कहते हैं क्योंकि उसने सच नहीं बोला तो मुझे क्रोध आ गया, तो क्या वो राइट है बाबा, पूछते थे। तो संस्कार खजाना है, जैसे स्टॉक रूम होता है ना, स्टॉक रूम होता है तो सब कुछ वहां होता है। तो संस्कार है भी क्या, हम कहते हैं ना मेरे संस्कार हैं, उसको मुझे परिवर्तन करना है। तो एक परिवर्तन होता है, दूसरा धारणा होती है। क्यों आवेश क्यों आया, आवाज क्यों जोर से हुई, क्योंकि मेरे में धैर्यता की कमी है, विश्वास की कमी है, कौन से गुण की कमी होने के कारण, जो कमजोर कहें, विकारी नहीं कहते आजकल, आज भी नहीं अव्यक्ति परिवार में था कि दृष्टि वृत्ति। तो संस्कार क्या है, जो हमने जो कुछ भी आप देखते हैं सुनते हैं करते हैं, तो कुछ मोस्टली कहते हैं दो बातें होती हैं, एक स्मृति दूसरा आदत। एक अवेयरनेस होती है, बाबा क्या कर रहे हैं, ज्ञान सुना के हमारी स्मृति बार बार, क्या स्मृति हो। और एक होता है कि सोच रहे हैं, जैसा है सोच रहे हैं, फिर वही सोच रहे हैं, भाई ऐसा क्यों दृष्टिकोण रखते हो। हमारी दादी प्रकाशमणि का एक महामंत्र होता था, जो कुछ भी ड्रामानुसार सब कुछ हो रहा है, ऐसे तो एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप गुणग्राही हैं, कार्य में सबकी विशेषताओं को देखते हैं, तो 98% सब कुछ अच्छा है। ध्यान से सुनिए, 98% सब कुछ बहुत अच्छा है, 2% नीचे ऊपर होता है। आप प्रोग्राम की तैयारी करो, कितनी भी करो, कभी एंड में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है। फिर चर्चा किस बात की होती है, जो 2% टेक नहीं होगा ना, और जो 90% क्या ठीक नहीं हुआ, क्या ठीक नहीं हो रहा है, या सदा वाह वाह करते रहो कितना वंडरफुल है। आप लोग हम सभी ब्रह्म भोजन खाते हैं, 5 बार और 6 बार भी, सबसे पहले उठते हैं तो चाय चाहिए। एक बार मैं अहमदाबाद से, बहुत साल पहले, जिस भाई के भाई 2-3 लोग थे, वो एक उसमें से चाय बनाने वाला था, तो मैंने कहा भाई कैसे रोज इतनी चाय बनाते हो। कहता है रात को 8:30 सोता हूँ, 2:30 बजे उठता हूँ, पानी के पतीले रख देता हूँ, आजकल तो सब डिफरेंट हो गया है, मैं पहले की बात कर रही हूँ, फिर बस तैयार होता हूँ, 4:15 बजे से आना शुरू हो जाते हैं, चाय तैयार होती है। तो सब ये कहते थे उस टाइम पर कि ये जो हर 24 घंटे सब कुछ, जब हम ज्ञान में आए तो आधी बाल्टी गर्म पानी की मिलती थी, वो भी बहुत दूर, लकड़ी का चूल्हा था, तो हमको मदद करके, जब हम पहली बार मैं 58 में आई, बहुत पुराना पांडव भवन था, तो आधी बाल्टी देते थे, हम ले जाते थे अपने कमरे में, बहुत दूर होते थे कमरे, और वो भी पीतल की बाल्टी, काफी भारी होते, फिर जाके उसमें ठंडा पानी मिलाते थे और एक ही बाल्टी से ठीक से स्नान करते थे। थोड़े दिनों के बाद हम एक बहुत बड़ी क्लास, अच्छी क्लास कराने वाले हैं कि कम पानी और कम बिजली, बिजली की भी मदद करो पानी की भी करो, क्योंकि हमने देखा रिपोर्ट में कि जितना पानी हर एक को यूज करना चाहिए रिपोर्ट अनुसार हम उससे डबल करते हैं। अगर हम ध्यान दें, चाहे वो यज्ञ की मदद कहो या प्रकृति का मान कहो, किसी ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि आप इतने साधारण क्यों रहते हो, बोला अपना हिस्सा लेता हूं दूसरों का नहीं लेता, कि इतना ही सबको मिल सकता है तो मैं अपना हिस्सा लेता हूं मैं, क्योंकि किसी का लेंगे ना। तो एक आदत है सोचने की, बोलने की, कर्म करने की, अगर हम उसको बाबा की श्रीमत अनुसार ज्ञान की धारणा से चलाते हैं तो आपके नए संस्कार बन रहे हैं, आपके स्वभाव में। राजू भाई ने कितने गुण बताए, मधुरता भी है तो धैर्यता भी है तो गंभीरता भी है, सब गुण। तो अगर हम ये लेके बैठ जाएं, क्या करें मेरा तो स्वभाव ऐसा है, क्या करें मेरे मन में ये ख्याल आ जाते हैं, क्या करें मेरे तो संस्कार ऐसे, ऐसी कोई लाचारी हालत में पहुंचना नहीं है किसी को। अपनी अगर हम गुणों पर ध्यान दें, कहते हैं कि अंधेरे को, अंधेरे पर अगर धिक्कार करते रहो, डार्कनेस, पर सबसे सहज तरीका क्या है, अंधेरे को कोई भगा सकता है? अंधेरे को अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो एक ही चीज है, और वो क्या है, रोशनी, प्रकाश लाओ अंधेरा जाएगा। तो ऐसे ही जितना जितना अपनी धारणा, चाहे वो पवित्रता की है, शांति की है, रूहानी स्नेह की है, आत्मिक स्नेह है, तो जितनी जितनी उसकी समझ से जीवन में मन वचन कर्म, हमारे व्यवहार और संबंध में सिर्फ संकल्प तक धैर्यता नहीं, हर गुण की जो शक्ति है, बाबा कई बार सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। कोई टाइम था दादी जानकी, हम लोग सभी एक देश से दूसरे देश घूमते रहते थे, तो एक बार दादी जानकी हमारे पास, तब मैं करेबियन में हुआ करती थी, यहाँ से कम 18,000 माइल दो, तो एक बार दादी जानकी आई हमारे पास, तो सर्विस बहुत अच्छी थी, तो उनको वीआईपी लॉन्च में एयरपोर्ट पर हम रिसीव कर रहे थे, तो एक दो मिनिस्टर, मतलब अच्छे लोग थे। तो जब दादी पहुंची ऊपर वीआईपी लॉन्ज में, अब दादी आप अकेली आई हो, छोटी सी थी दादी राय, हाथ में थैला लिया हुआ था, और ये पता था कि ये मुख्य प्रशासिका है, तो पूछते थे आप अकेले आए हो, दादी कहती है नहीं, तो और लोग कहाँ हैं, पूछते हैं और लोग कहाँ हैं, कहती है मेरे साथ 8 लोग आए हैं, मेरी 8 नौकरानी आई है मेरे साथ, तो बेचारे पर इधर देखे उधर देखे, तो वो वहीं बैठे थे, काफी वीआईपी लोग भी थे, बोला वो मेरी अष्ट शक्तियां हैं, मैं उनके साथ ट्रेवल करती हूँ, क्योंकि उन दिनों में इतना पैसा भी नहीं था कि किसी और को ला सको, एक टिकट भी बहुत महंगी लगती थी। मैं तो अष्ट शक्तियों के साथ ही ट्रेवल करती हूँ। तो जितनी जितनी हम में धारणाएं हैं, गुणों की कयूज है, वो शक्तियां बनती जाती है नहीं हमारे। कई बार ऐसा हुआ कि हम दादी को ले जा रहे हैं कहीं, उनको तो मन में जो संकल्प आए वो करके ही छोड़ देते रहे। तो एक बार वो हमें मिले ही नहीं एयरपोर्ट पर, दादी कहाँ चली गई, दादी कहाँ, दादी गुम हो गई, ऐसे करके ढूंढ रहे हैं। और वो एक तरफ बैठी हैं तो कई लोग बैठ गए, उनको ज्ञान सुना रहे थे। क्योंकि उन दिनों में यही था कि अगर ब्राह्मण कथा नहीं करते तो भोजन नहीं करते, ये दादी का नियम था। तो जब सेंटर पे इतनी सेवा नहीं है, सेंटर थे भी नहीं, तो वो बगीचे में चली जाती थी, कोई मिले मैं उसको ज्ञान सुनाऊं तो जाके नाश्ता करूं। ऐसी धारणा उन दिनों में दादी जानकी की थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो संस्कार गुप्त इसलिए है, जब वो संकल्प में प्रकट हो और वो बाबा की श्रीमत अनुसार, ज्ञान अनुसार राइट नहीं है तो वहीं चेंज कर लो। बाबा के महावाक्य ले लो, बाबा की शिक्षाएं, बाबा के आदेश, उसको उसके संकल्प बनाओ। कल परसों मुरली में था ना कि हम सबको कहते हैं पॉजिटिव सोचो, तो बाबा ने कहा संकल्प शुद्ध हो, ज्ञान के हो, बाबा के प्रेम के हो। तो सिर्फ पॉजिटिव से नहीं चलता, परंतु हमारे संकल्पों में सब गुण हो, सब शक्तियां। तो जितना जितना हम ज्ञान सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, फिर उसको व्यवहार में प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो नए संस्कार बनते जाते हैं। तो बेशक हम कहते हैं संस्कार परिवर्तन, मैं फिर कहती हूँ बाबा नई दुनिया रच रहे हैं, हम नए संस्कार बना रहे हैं। और वो जो संस्कार हम बना रहे हैं वो हमारे अनादि और आदि स्वरूप के हैं। तो अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो जो अंदर का संसार है, मन बुद्धि संस्कार, अब जब हम बाबा की याद में या मेडिटेशन को योग करते हैं तो वो तीनों में, जैसे मन भी शांत है, बुद्धि भी शांत है, तो संस्कार भी ऑटोमेटिकली शांत है। इतने तक कि सूक्ष्म में
Love.
हम सभी मन को मन मना भाव और बुद्धि योग मन मना भाव मन को मेरे में स्थित करो। और मेरी बुद्धि एक बाप की तरफ हो। तो स्वभाव भी बदलेगा, संस्कार भी बदलेंगे, एक आंतरिक रूप से भरपूरता। बाबा कहते हैं बच्चे सोचता स्वरूप नहीं बनो, स्थिति और स्वरूप। तो बहुत सोचना नहीं है, पर थोड़े से संकल्प, उस पर एकाग्रता। मन भी शांत, बुद्धि भी शांत और संस्कार भी शांत। और बाबा चाहते हैं कि लीन अवस्था, लव लीन, सागर है बाबा, जितना जितना सागर में गहराई में जाते हैं तो एकदम सागर शांत, लहरें स्थिर, कुछ भी नहीं हिलता। तो आज हम सभी स्वाभाविक रूप से लीन अवस्था, सबसे पहले लवलीन, सागर में लीन। लहरें तो सिर्फ ऊपर ऊपर, सागर की गहराई में जाएं, हमारे दिल से बाबा के प्रति प्यार, एक बल एक भरोसा, बाबा से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति है। सभी संगठन में एक ही संकल्प, जिससे विश्व परिवर्तन, वह संकल्प है बाबा का हम बच्चों के प्रति स्नेह, बच्चों के प्रति प्यार, बेहद का निस्वार्थ केवल हमें लायक बना दें। अभी हम शांति के सागर शांति की शक्ति शांत स्वरूप में आत्मा शांति के सागर में समा लें। आनंद के सागर, दुख सुख से न्यारे, एक रस अवस्था, सदा स्मृति स्वरूप, मैं एक आनंद स्वरूप न्यारी और प्यारी आत्मा हूं। आनंद के सागर में लीन, सुख के सागर, सुख दाता, अतीन्द्रिय सुख, सुख के सागर में ली, ऐसे लीन अवस्था में डबल लाइट बेफिकर बेगमपुर के बादशाह बाबा की छत्र छाया बाप समान बनते हुए विश्व सेवादारी विश्व परिवर्तक राजयोगी बच्चे यही मेरा स्वभाव संस्कार और व्यवहार हूं
जो बीज में है एक विशाल